डॉक्टर क्रेग कीनर रोमन्स व्याख्यान 8 रोमियो 7:01 से 8:04 2024 क्रेग कीनर और टेड हिल्डेब्रांट। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 7:01 से 8:04 पर सत्र संख्या 8 है। रोमियो 7 रोमियो 1 की तरह उन अध्यायों में से एक है जो कम सुखद है, लेकिन हम इसके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करने जा रहे हैं। खुशी की बात है कि रोमियो 7 को रोमियो 6 और रोमियो 8 के बीच रखा गया है, और यह वास्तव में मुद्दे का हिस्सा है, न केवल गणित के संदर्भ में बल्कि रोमियो की पुस्तक में विचार के प्रवाह के संदर्भ में भी। लेकिन इससे पहले कि हम रोमियो अध्याय 7 का पता लगाएं, हमें देह के अर्थ को देखने की जरूरत है। हालांकि यह शब्द रोमियो 8 में अधिक दिखाई देता है, यह यहां पृष्ठभूमि के लिए सहायक होगा। अब कुछ विद्वानों ने वास्तव में मांस, सार्क और शरीर, सोम के बीच किसी भी संबंध से बचने की कोशिश की है। दुर्भाग्य से पॉल उनमें से कुछ को जोड़ता है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है, यहूदी धर्म बहुत समग्र था और वे आत्मा और शरीर के बीच अंतर नहीं करते थे। दरअसल कभी कभी उन्होंने यहूदिया और गलील में ऐसा किया, लेकिन विशेष रूप से प्रवासी यहूदियों ने। वे आमतौर पर यूनानी विचारधारा के अनुसार आत्मा और शरीर में अंतर करते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें उस मॉडल का पालन करना होगा, लेकिन यदि आप वास्तविक पाठों को देखें तो रॉबर्ट गुंडरी ने सोमा नामक पुस्तक में इस ओर इशारा किया है, जिसका अर्थ है शरीर, और हाल ही में कुछ अन्य विद्वानों ने भी इस ओर इशारा किया है। लेकिन किसी भी मामले में 1 कुरिन्थियों 6:16 पॉल कहता है कि तुम एक आदमी बनो जो एक वेश्या के साथ सोता है, उसके साथ एक शरीर बन जाता है। फिर वह उत्पत्ति 2 को उद्धृत करता है, जिसमें उसका उद्धरण भी शामिल है, जिसमें कहा गया है कि वे एक तन बन जाते हैं। इसलिए वहां सोम और सार्क्स का प्रयोग परस्पर विनिमय के लिए किया जाता है। रोमियो 7:05 जुनून और शरीर के अंग शरीर में होने से संबंधित हैं। रोमियो 8:13 शरीर में मृत्यु की तुलना शरीर के कार्यों को मारकर शरीर के पुनरुत्थान से की जाती है। अध्याय 7:23-25 शारीरिक सदस्य शरीर के शासन से संबंधित हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि शरीर ही खराब है। शरीर का उपयोग अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है। रोमियो 12:01 कि तुम अपने शरीर को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। लेकिन इसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा सकता है। रोमियो 6:13 कहता है, अपने शरीर को पाप के अंग के रूप में प्रस्तुत न करो, परंतु उन्हें धार्मिकता के साधन के रूप में प्रस्तुत करो। बुरे उपयोगों में 1:24 में शरीर को यौन रूप से अपवित्र करना शामिल है। 6:06 में आदम के पुराने जीवन की तुलना पाप के शरीर से की गई है। नश्वर शरीर की इच्छाओं का पालन न करें 6:12 7:24 मृत्यु के शरीर से संबंधित नैतिक हार। और आपके पास 8:10-13 तक कुछ वैसा ही है। मुद्दा शारीरिक जुनून है, हालांकि यह शरीर ही नहीं है। हमें अपने शरीर की जरूरत है, और पॉल 1 कुरिन्थियों 6 में बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे शरीर पुनर्जीवित किए जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 5 हमारे शरीरों में किए गए कामों के अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा। पॉल ग्नोस्टिक्स के विपरीत यहूदी दृष्टिकोण रखता है, जो सृष्टि से जुड़ा है, कि जब भगवान ने इन चीजों को बनाया तो यह अच्छा था। उसने बनाया, यदि आप शरीर और आत्मा को अलग मानते हैं तो उसने शरीर और आत्मा दोनों को बनाया। वे दोनों निर्मित हैं और वे दोनों अच्छे हैं, लेकिन उनका उपयोग अच्छे के लिए किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में मुद्दा शारीरिक जुनून है। 1:24, 6:12, 13:14 वह वासनाओं के विरुद्ध सावधान करता है, वासनाओं के विरुद्ध चेतावनी देता है। अब एक एहसास है कि हमें जीवित रहने के लिए उनकी आवश्यकता है। वे बनाए गए थे और वे अच्छे बनाए गए थे। हमें भूख की जरूरत है, इसलिए हम खाएंगे, लेकिन हमें पेटूपन की जरूरत नहीं है। हमें संतानोत्पत्ति के लिए जुनून की आवश्यकता है, इसलिए प्रजातियां जारी रहेंगी। अन्य प्राणियों की तरह ही मनुष्य को भी इसकी आवश्यकता है। यदि वे जुनून न होते तो मानव जाति शायद बहुत पहले ही समाप्त हो गई होती। लेकिन जुनून को हम पर हावी नहीं होना चाहिए। हमें उस पर शासन करना चाहिए जो सही है। हमें चुनाव इस आधार पर करना चाहिए कि क्या सही है, न कि इस आधार पर कि हम शारीरिक रूप से क्या करने की इच्छा महसूस करते हैं। उन जुनूनों को उत्पादक दिशाओं में प्रवाहित किया जाना चाहिए, जैसे कि यदि आप शादीशुदा हैं या स्वस्थ भोजन कर रहे हैं या कुछ और। हालांकि बाइबल भोजन की तुलना में कामुकता के साथ बहुत कुछ करती है, क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सोना जिससे आपकी शादी नहीं हुई है ईश्वर के नियम का उल्लंघन है। लेकिन वैसे भी यहां तक कि मांस शब्द का प्रयोग भी हमेशा नकारात्मक रूप से नहीं किया जाता है, जिसमें पॉल भी शामिल है। गलातियों 2:20 में पॉल उस जीवन की बात करता है जो मैं शरीर में जीता हूं। मैं ईश्वर के पुत्र में विश्वास के साथ जीता हूं जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए खुद को दे दिया। देह अक्सर केवल बाहरी अस्तित्व का वर्णन करता है। रोमियो 1:03, यीशु शरीर के अनुसार दाऊद का वंशज था। अध्याय 2:28 में वह शरीर में खतना की बात करता है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अध्याय 4:01 इब्राहिम शरीर के अनुसार हमारा पूर्वज है। फिर इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अध्याय 9 हैप्पी स्माइली पॉल यहूदी लोगों को शरीर के अनुसार अपने रिश्तेदार के रूप में बोलता है। अध्याय 9:05 मसीह यहूदी लोगों से शरीर के अनुसार अर्थात शारीरिक रूप से और आनुवंशिक रूप से अवतरित हुए थे। 11:14 इनमें से कुछ में आपके अनुवादों को अलग तरह से पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैं वहीं जा रहा हूं जहां ग्रीक में सार्क्स कहा गया है। 11:14 वह अपने साथी यहूदी लोगों को मेरा शरीर कहता है। लेकिन जहां यह एक मुद्दा बन जाता है, रोमियो 8:4-9 में आपके पास शरीर बनाम आत्मा है। अब जब कुछ लोग समग्रता की बात करते थे तो वे इसके खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। यह हमारा शरीर बनाम हमारी आत्मा नहीं है, यह देह बनाम परमेश्वर की आत्मा है। पुराने नियम में आपके पास यशायाह की किताब जैसा कुछ है जहां मिस्रवासी इंसान हैं, भगवान नहीं, और उनके घोड़े मांस हैं, आत्मा नहीं। लेकिन विशेष रूप से उत्पत्ति 6:3 में, जो एक ऐसा मार्ग था जिसका अक्सर यहूदी लोगों द्वारा खनन किया जाता था। उत्पत्ति 6:03 जहां भगवान कहते हैं, मेरी आत्मा हमेशा मानवता के साथ प्रयास नहीं करेगी क्योंकि वे सिर्फ मांस हैं, सरक्स। जब पुराना नियम ग्रीक अनुवाद में सारक्स, यदि आप हिब्रू के बारे में सोच रहे हैं तो यह बसर है। लेकिन पुराने नियम में जब यह बसर की बात करता है, या आमतौर पर ग्रीक में इसका अनुवाद सरक्स करता है, जब यह बसर या मांस की बात करता है तो इसे मनुष्यों पर लागू किया जा सकता है, इसे जानवरों पर लागू किया जा सकता है। किसी भी मामले में यह इसे हमारी प्राणिता और हमारी मृत्यु दर के दृष्टिकोण से देख रहा है। खैर, यह कमजोरी और सीमितता का अर्थ देता है। कमजोर और सीमित होना अपने आप में पाप नहीं है। हम सीमित हैं। और जब यीशु देहधारी हुआ तो जाहिर है वह अभी भी परमेश्वर था, लेकिन उन्होंने देहधारण करके खुद को कुछ मायनों में सीमित कर लिया। इसलिए वह कहता है, यह तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं पिता के पास जाऊं, मैं तुम्हारे लिए आत्मा भेजूंगा। क्योंकि जब वह शारीरिक रूप से हमारे साथ था, तो वह एक समय में हम में से किसी एक के साथ भी हो सकता था। खैर, हम में से कोई एक नहीं, बल्कि एक समय में एक ही जगह पर। और इसलिए जब वह पिता के पास जाता है और आत्मा हमें सशक्त बनाती है, तो कार्य को एक ही समय में कई स्थानों पर फैलाया जा सकता है। खैर, मृत सागर स्क्रॉल में वे मांस की शब्दार्थ सीमा का विस्तार करते हैं। इस कमजोरी में पाप के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल है। और फिर कई बाद के ज्ञान शास्त्रियों के विचारों के विपरीत, मांस स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, लेकिन यह पाप के प्रति संवेदनशील है, यह प्रलोभन के प्रति संवेदनशील है। पॉल का लक्ष्य शरीर का विनाश नहीं है। कुछ यूनानी विचारक थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने अपने शरीर को मारने की कोशिश नहीं की। कार्नेडिस और कुछ अन्य इसके अपवाद हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश भाग में यूनानी अपने शरीर को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वे वास्तव में आमतौर पर व्यायाम की सराहना करते थे, लेकिन वे अक्सर क्या कल्पना कर रहे थे, या कई दार्शनिक, विशेष रूप से प्लेटोनिक परंपरा में मानते थे कि आत्मा शरीर से अधिक महत्वपूर्ण थी, और यह कि जब शरीर मर जाएगा तो आत्मा शुद्ध स्वर्ग में ऊपर उठेगी। उनमें से कुछ तो यहां तक कह गए कि सोमसेमा, शरीर एक कब्र है, और इसलिए जब आप मरते हैं तो आप उससे बच जाते हैं, बशर्ते आप हमेशा अपने मन का विकास करते रहे हों। पॉल का लक्ष्य वह नहीं है, और पॉल का लक्ष्य निश्चित रूप से आत्मविनाश नहीं है, जैसा कि आप कुछ तरीकों से सोचते हैं, निर्वाण या कुछ और। ऐसा नहीं है कि स्वयं बुरा है, बात यह है कि स्वयं सीमित है, यह सीमित है, और यह पाप के प्रति संवेदनशील है। इसलिए बल्कि इसे उस बड़े उद्देश्य से जोड़ने की जरूरत है जिसके लिए हम बनाए गए हैं। रोमियो 12 की तरह पॉल अपने शरीर को ईश्वर की सेवा के लिए समर्पित करने की बात करता है, और अंततः प्रसंग आगे बढ़ता है, हमारा शरीर उसके शरीर की सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमारे पास एक बड़ा उद्देश्य है जिससे हम जुड़े हुए हैं, कुछ अनंत। तो मांस और आत्मा के बीच का अंतर हमारे बीच का अंतर है जिसे हम खुद पर छोड़ देते हैं, अपने जुनून पर छोड़ देते हैं। कमजोर नश्वर प्राणियों के रूप में हम जो सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं उस पर छोड़ देते हैं। इसके विपरीत जब भगवान की आत्मा हमारे अंदर रहती है तो हम क्या होते हैं, मसीह में नए प्राणियों के रूप में। तो विरोधाभास उन लोगों के बीच है जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया गया है और जिनके पास ईश्वर की आत्मा है। तो फिर मांस क्या है, इसकी भावना विशेष रूप से संदर्भ से निर्धारित होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राणित्व की यह समझ हमेशा होती है और भेद्यता का विचार उसी से उत्पन्न होता है। रोमियो 7 पद 1 से 6 पॉल हमारे कानून से मुक्त होने की बात करता है। यहूदी परंपरा में तोरा इज़राइल से विवाहित ईश्वर की बेटी थी, कम से कम कभी कभी यहूदी परंपरा में इसकी इसी तरह कल्पना की गई थी। यहां यह दूसरा तरीका है। हम एक विधवा की तरह हैं, हमारा विवाह तोरा से हुआ था, लेकिन जब एक विधवा का पति मर जाता है तो मृत्यु से विवाह समाप्त हो जाता है, और यह यहां विधवा को उसके पति से मुक्त होने की बात करता है। यहूदी तलाक कानून और विधवाओं के बारे में यहूदी कानून इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, और जिनके पास ईश्वर की आत्मा है। तो फिर मांस क्या है, इसकी भावना विशेष रूप से संदर्भ से निर्धारित होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्राणित्व की यह समझ हमेशा होती है और भेद्यता का विचार उसी से उत्पन्न होता है। व्यक्ति अपने पिछले संबंध से मुक्त हो जाता है। पहले वे दूसरे व्यक्ति से बंधे थे, वे दूसरे व्यक्ति से बंधे थे। मिशनह गिट्टिन 9 जब किसी व्यक्ति का अपने पति से तलाक हो जाता है तो यह कहता है कि वह अब उससे बंधी नहीं है, वह उससे मुक्त हो गई है। पॉल यहां उसी भाषा का प्रयोग करता है। कभी कभी वह अपने लेखन में तलाक के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहां वह इसका उपयोग वैधव्य के लिए करता है। यही उसके चित्रण का बिंदु होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, एक पत्नी, क्योंकि इस बिंदु पर यहूदी कानून के तहत बहुविवाह आधिकारिक तौर पर अवैध नहीं था। पॉल को चित्रण का सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। लेकिन पत्नी एक बार अपने पति से मुक्त हो जाने के बाद पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र है। जब तक वह अपने पति से मुक्त नहीं हो जाती, वह पुनर्विवाह करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो पॉल तर्क दे रहा है, हम मसीह के साथ एकजुट हो गए हैं और ऐसा होने के लिए हमें टोरा से मुक्त होना होगा। यह एक दृष्टांत है। इसलिए विश्वासी अपने पिछले मिलन से मर गए। अब संभवतः हम मसीह की दुल्हन हैं। इसे इफिसियों 5:28 से 31 में स्पष्ट किया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पॉल 1 कुरिन्थियों 6:16 से 17 में पहले से ही ऐसा सोचता है, जहां वह कहता है कि हमें एक वेश्या से नहीं जुड़ना चाहिए क्योंकि हम उससे जुड़ चुके हैं, मसीह। संभोग आपको किसी के साथ एक तन बनाता है, लेकिन हम प्रभु के साथ एक आत्मा बन गए हैं। तो हम मसीह के साथ एकजुट हो गए हैं। हम मसीह की दुल्हन हैं और हमारा विवाह मसीह से होगा। अब वह इस मिलन की बात शारीरिक संतान पैदा करने के रूप में नहीं, बल्कि भगवान के लिए फल पैदा करने के रूप में करता है, अध्याय 7:4। और वह आगे भी फल की उस भाषा का उपयोग करने जा रहा है। पद 5:6 में वह कहता है, हम देह में थे। इसका मतलब यह नहीं है कि हम शरीर में थे, जैसा कि आप जानते हैं, गलातियों 2:20 में वह कहता है, जो जीवन मैं शरीर में जीता हूं। खैर, वहां वह शरीर में होने की बात कर रहा है। लेकिन वह यह नहीं कह रहा है कि हम देहधारी हुआ करते थे और अब हम अपने शरीर में नहीं हैं, क्योंकि इस तरह की भाषा वह मृत्यु के बाद के जीवन के लिए उपयोग करता है। जब आप मर जाते हैं तो वह इसी प्रकार की भाषा का उपयोग करता है। और यह ऐसी चीज नहीं है जिसकी वह आशा कर रहा है। वह शरीर के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहा है, 2 कुरिन्थियों 5। लेकिन वह कहता है कि हम शरीर में थे, और जब हम शरीर में थे उस समय व्यवस्था से उत्पन्न वासनाएं हमारे शरीरों में काम करती थीं। परंतु अब व्यवस्था से मुक्त होकर हम आत्मा की नवीनता से सेवा कर सकते हैं। एक बार जब हम जुनून के अधीन थे तो उन्होंने हम पर प्रभाव डाला, क्योंकि हमारे पास ईश्वर की आत्मा हमें अलग तरीके से प्रभावित नहीं कर रही थी। हमारे पास नियम और कानून हो सकते हैं, लेकिन वही नियम और कानून जितने अधिक विस्तृत होते गए, उतना ही अधिक उन्होंने उन नियमों के खिलाफ जाने की हमारी विपरीत प्रवृत्तियों को उजागर किया। लेकिन जब हम आत्मा पर निर्भर होते हैं तो इसका कारण यह नहीं है कि हम अपनी नैतिकता को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने या अपनी सोच को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह है कि ईश्वर अपनी गतिविधि हमारे भीतर निवेश करता है और हमें भीतर से बदल देता है। वह कहते हैं, अब हमें आत्मा की नवीनता में सेवा करने के लिए कानून से मुक्त कर दिया गया है। हम अभी भी सेवा कर रहे हैं। अध्याय 6 में गुलाम होने की भाषा याद रखें। लेकिन अब हम पाप के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अब हम धार्मिकता के गुलाम हैं। और यहां वह कहता है, हम परमेश्वर के दास हैं, जैसा कि वह अध्याय 6:22 में भी कहता है। नवीनता, हम नवीनता में सेवा करते हैं। यह अध्याय 6:4 में नए जीवन की याद दिलाता है। हमारे पास मसीह के साथ नया जीवन है। पत्र की पुरानीता के विपरीत वे कहते हैं, ठीक है, यह अध्याय 6 और छंद 6 में पुराने जीवन से जुड़ा हुआ है, पैलियोस एंथ्रोपोस, एडम में जीवन, और वह अक्षर और आत्मा की तुलना करता है। खैर, रब्बी टोरा के अध्ययन में इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि कभी कभी वे वर्तनी के सूक्ष्म मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए यतिजिर उत्पत्ति 2:07 में आवेग उन्होंने नोट किया, ठीक है, यहाँ हमारे पास दोगुना योड़ है, और इसलिए उन्होंने इसका मतलब यह समझाने की कोशिश की कि इसका क्या मतलब है। शायद 2 यतिजिर, 1 अच्छा और बुरा यतिजिर इत्यादि। पत्र हम विवरणों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसे पाठ के साथ कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। यह पूर्णतः पाठ्य उन्मुख है, परंतु आत्मा का जीवन उससे भी बढ़कर है। कुछ लोगों ने इसे इस तरह पढ़ा जैसे कि पॉल पुरानी वाचा के खिलाफ है, जैसे कि पुरानी वाचा खराब थी। बात यह नहीं है कि पुरानी वाचा खराब है, मुद्दा यह है कि नई वाचा महान है। आप देखते हैं कि 2 कुरिन्थियों 3:6-8 विशेषकर 6 और 7 में नई वाचा पुरानी वाचा से बड़ी है। सिंक्रेसिस या तुलना के अलंकारिक अभ्यास में फिर से पॉल अलंकारिक अभ्यास के लिए इस प्रकार के लेबल के संदर्भ में नहीं सोच रहा होगा, लेकिन पात्रों की तुलना करना, वस्तुओं, गुणों आदि की तुलना करना एक आम प्रथा थी। आपके पास पुराने नियम में भी ऐसा हुआ है। यह पूरी तरह से ग्रीक अलंकारिक उपकरण नहीं है, लेकिन तुलना हमेशा अच्छे और बुरे के बीच नहीं होती। कभी कभी वे कुछ अच्छे और कुछ बेहतर के बीच होते हैं। ऐसा नहीं है कि पुरानी वाचा खराब थी, यह है कि नई वाचा महान है और नई वाचा अब हमें पुरानी वाचा से परे ले गई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो पाठ हैं हम पुराने नियम में उनसे नहीं सीखते हैं। वहां अभी भी सिद्धांत हैं, लेकिन अब एक अंतर है। यिर्मयाह 31 ने पहले पुरानी वाचा के बारे में बात की थी, यह उस वाचा के समान नहीं है जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ बनाई थी, जिसे उन्होंने तोड़ दिया, प्रभु कहते हैं, बल्कि नई वाचा के साथ कानून आपके दिल और आपके दिमाग में लिखा जाएगा, प्रभु स्वयं यह करेंगे। और इसलिए 2 कुरिन्थियों 3 यिर्मयाह के उस अंश को यहेजकेल 36:26-27 के साथ मिलाता है, जहां भगवान अपने लोगों के भीतर एक नया दिल, अपने लोगों के भीतर एक नई आत्मा डालते हैं, और परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर समवाऊंगा और तुम्हें अपनी आज्ञाओं के अनुसार चलने दूंगा। तो पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच का अंतर यह नया सशक्तिकरण है, जहां भगवान अपनी आत्मा हमारे भीतर डालते हैं। और हमारे यहां यही है, अक्षर और आत्मा के बीच का अंतर। 2 कुरिन्थियों 3, यह बहुत स्पष्ट है कि वह पत्थर की पट्टियों पर लिखे गए कानूनों के पुराने तरीके से बात नहीं करता है, बल्कि यह यहेजकेल की भाषा का उपयोग करके और अब आत्मा द्वारा हमारे हृदय की शारीरिक तालिकाओं में लिखा गया है। इसलिए रोमियो अध्याय 7:6 में वह पुरानी वाचा को बदनाम नहीं कर रहा है, वह टोरा को बदनाम नहीं कर रहा है, बल्कि वह कह रहा है कि अब हमारे पास जो है वह उससे कहीं अधिक है, और यदि हमारे पास बस इतना ही होता तो हम पाप पर विजय नहीं पा सकते। पुराने नियम में भी कभी कभी हम लोगों के दिलों में लिखे गए कानून के बारे में पढ़ते हैं। वह सदैव ईश्वर का आदर्श था, लेकिन अब ईश्वर की आत्मा द्वारा हमें ऐसा करने के लिए अधिक व्यापक रूप से सशक्त बनाया गया है। और फिर ऐसा नहीं है कि ऐसा तब नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा अधिक होता है। क्या कानून पाप है? उन्होंने यह तुलना की है। उन्होंने कहा, हम पाप से मुक्त हो गए हैं, अध्याय 6। फिर वह कानून द्वारा मुक्त होने की बात करते हैं। तो लोग स्पष्ट प्रश्न पूछते हैं। वार्ताकार कहता है, अच्छा तो क्या कानून पाप है? और उसका उत्तर है, भगवान न करे, ऐसा कभी नहीं होगा। तोरा अच्छा है, वह अध्याय 7 छंद 12 और 14 में कहता है, लेकिन कानून परिवर्तन के बजाय मांस को नियंत्रित करता है। यह पाप को सीमित करता है। यह हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन अपने आप में परमेश्वर की आत्मा की गतिविधि के बिना यह हमें परिवर्तित नहीं करता है। यह हमें नया नहीं बनाता। कानून सुसमाचार का समर्थन करता है। पॉल ने अध्याय 3 और श्लोक 31 में कहा, कानून हमें विश्वास का मार्ग सिखाता है। और फिर वह उत्पत्ति 15:06 से रोमियो 4 में इसका वर्णन करने लगा। वह अध्याय 10 छंद 6-8 में भी इससे निपटने जा रहा है। वह व्यवस्था विवरण अध्याय 30 का हवाला देते हुए टोरा के साथ एक सादृश्य बनाने जा रहा है, जहां शब्द आपके मुंह में और आपके दिल में है। और फिर पॉल ने इसे लागू किया उस संदेश के लिए जो अभी हमारे पास है, विश्वास का संदेश, कि यदि वह आपके मुंह में और आपके दिल में है तो आप बच जाएंगे। खैर, अध्याय 8 और पद 2 में वह इस बारे में बात करने जा रहा है कि कैसे कानून को आत्मा द्वारा हमारे दिलों में लिखा जा सकता है। यहेजकेल 36 को याद दिलाते हुए रोमनों के इन विभिन्न अंशों में वह इस बात पर जोर देता है कि हमें विश्वास के बजाय विश्वास के साथ कानून का पालन करना चाहिए कार्यों के लिए एक मानक द्वारा। यह हमें परमेश्वर के साथ रिश्ते के बारे में क्या सिखा सकता है? यह हमें सही और गलत के बारे में सिखा सकता है, लेकिन यह हमें ईश्वर में विश्वास के बारे में क्या सिखा सकता है, जो हमें सशक्त बनाता है। हमें शरीर के बजाय ईश्वर पर भरोसा करने की जरूरत है। तो 3:27 में आपके पास यह है कि कानून को घमंड के कानून, कार्यों के कानून के बजाय विश्वास के कानून के रूप में देखें। अध्याय 9 श्लोक 31 और 32 भी, जिस पर हम बाद में आएंगे, पॉल के कुछ जानबूझकर उत्तेजक बयान हैं। प्राचीन वक्तृता ने कभी कभी लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चौंका देने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। यीशु अक्सर यहूदी शिक्षकों के तरीकों का पालन करते हुए ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे तरीके थे जिनसे यीशु की शिक्षाएं बहुत विशिष्ट थीं, लेकिन चौंकाने वाली भाषा का उपयोग, अतिशयोक्ति का उपयोग, ग्राफिक अलंकारिक अतिकथन इत्यादि रब्बियों के बीच काफी आम था, शायद उस हद तक नहीं जितना यीशु इसका उपयोग करते हैं। लेकिन शॉक वैल्यू के इस्तेमाल में पॉल आपका ध्यान बनाए रख रहा है। इसके बाद वह इसे क्वालिफाई कर सकता है। वह कुछ उत्तेजक बयानों का उपयोग करता है, विशेष रूप से गलाटियंस में, जहां वह वास्तव में लोगों को चौंकाना चाहता है। उसे उनका ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, लेकिन हमें उन्हें कानून के उनके संपूर्ण धर्मशास्त्र के रूप में नहीं लेना चाहिए और फिर कहना चाहिए, ठीक है, हम पुराने नियम को कम करते हैं या हम सिद्धांत के भीतर एक सिद्धांत के साथ समाप्त हो जाते हैं। यद्यपि हम कार्यात्मक रूप से कैनन के कुछ हिस्सों को उनके आसपास की चीजों के लिए व्याख्यात्मक ग्रिड के रूप में उपयोग करते हैं, मेरा मतलब है आपके पास यह पुराने नियम में भी है। उत्पत्ति 33 और 34 व्यवस्था देने के संदर्भ में परमेश्वर ने मूसा को अपना स्वभाव प्रकट किया और हमें उसके मर्म के आलोक में विवरण पढ़ने की जरूरत है, और यहूदी शिक्षक इसे पहचानते हैं। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने शेमा का हवाला दिया तो सुनो हे इसराइल, प्रभु हमारा परमेश्वर प्रभु एक है, और फिर वे आगे बढ़े कि अबके परमेश्वर यहोवा से अबके सारे मन प्राण और शक्ति से प्रेम रखो। उन्होंने इसे टोरा के सारांश के रूप में देखा। आपके पास अन्य स्थान है जहां यह मामला है, जहां आपके पास भगवान की शिक्षाओं के मर्म को एक साथ खींचने वाला सारांश है। यीशु मत्ती 9:13-12:07 में बलिदान से अधिक दया का प्रयोग करते हैं। और आपके पास वह मीका 6:8 में है, जहां वह कहता है, हे मनुष्य, प्रभु तुझ से इसके अलावा और क्या चाहता है। और वह उन चीजों के साथ आगे बढ़ता है जो कानून के मर्म को संक्षेप में प्रस्तुत करती हैं। यीशु ऐसा प्रेम के नियम के साथ करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं और अपने पड़ोसी को हृदय के समान प्रेम करते हैं। यह कानून के सिद्धांतों का सारांश है। इसका उद्देश्य पेंटाटेच के आगमनात्मक अध्ययन को बाधित करना नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य निश्चित रूप से हमें यह याद दिलाना है कि बाइबल का अकादमिक ज्ञान ईश्वर के अनुभव के समान नहीं है। क्योंकि कभी कभी, और यह सेमिनारियों के साथ हो सकता है, यह प्रोफेसरों के साथ हो सकता है, कभी कभी हम व्याकरणिक विवरणों पर इतना केंद्रित हो जाते हैं, उदाहरण के लिए, कि हम पेड़ों के लिए जंगल को याद करते हैं। हमें परमेश्वर के हृदय की याद आती है। मैं कभी कभी इसे अपने विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार स्पष्ट करता हूँ, और मुझे ऐसा करने की जरूरत है, क्योंकि बेशक हमारी कक्षाओं में हम विवरणों में जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे पहले समझें और बड़ी तस्वीर को न भूलें। मैंने बिल्ली को भागते देखा। मैं यह पहला व्यक्ति है, व्यक्तिगत सर्वनाम, देखा, नेत्र संवेदना के लिए भूतकाल की क्रिया, निश्चित लेख, बिल्ली, फेलिक्स डोमेस्टिकस, रन, तीव्र गति के लिए भूतकाल की क्रिया, सामान्यतः हमारे मामले में द्विपाद तीव्र गति। अब क्या इससे वाक्य स्पष्ट हो गया है? हम विवरणों पर इतना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कभी कभी हम बड़ी तस्वीर भूल जाते हैं। वह रोमियो 7 में कानून के तहत जीवन की बात करता है। यह कई विद्वानों द्वारा तर्क दिया गया है, लेकिन अच्छे कारण के साथ। मेरा मतलब है, रोमियो 7:07-25 तक कानून का 15 बार उल्लेख किया गया है। और कई विद्वानों के साथ मेरा मानना है कि अध्याय 7 के छंद 5 और 6 हमें एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। हम देह में थे। यह कुछ ऐसा है जो हमारे बारे में सच हुआ करता था, जब व्यवस्था के द्वारा वासनाएं जागृत हुई थीं, परंतु अब श्लोक 6 में हम व्यवस्था से मुक्त हो गए हैं। हम आत्मा की नवीनता में चलते हैं। मेरा मानना है कि पौलुस अध्याय 7 के शेष भाग में विस्तार से बताता है कि हम शरीर में क्या थे, और अध्याय 8 में आत्मा की नवीनता के बारे में विस्तार से बताता है। अब आप कहते हैं, ठीक है, लेकिन अध्याय 7 में, खासकर जब आप छंद 14-25 तक पहुंचते हैं, यह वर्तमान काल का उपयोग करता है, और इसलिए यह पॉल के वर्तमान जीवन का वर्णन कर रहा होगा। यह बहस का विषय है, विशेष रूप से 7:14-25 में 7:07-13 की तुलना में अधिक, क्योंकि यह वर्तमान काल का उपयोग करता है। लेकिन अलंकारिक विस्तार कभी कभी किसी चीज में जीवंतता जोड़ने के लिए वर्तमान काल का उपयोग कर सकता है। आप उस चीज के बारे में सोच सकते हैं जिसे परंपरागत रूप से कथा में ऐतिहासिक वर्तमान कहा जाता है, हालांकि यह आमतौर पर सुसंगत नहीं है, जैसे मार्क इसका लगातार उपयोग नहीं करता है। लेकिन ग्रीक क्रिया के कुछ हालिया अध्ययनों में लोग कभी कभी पहलू के संदर्भ में बात करते हैं, अर्थात कभी कभी आप निर्णायक भूतकाल का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम भूतकाल मानते हैं, केवल बाहर से होने वाली क्रिया का वर्णन करने के लिए, जबकि वर्तमान काल, जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, का उपयोग कभी कभी केवल क्रिया को अंदर से देखने के लिए किया जाता है, और यह इसे इस तरह से और अधिक उज्ज्वल बनाता है। 7:14-25 स्पष्ट रूप से कानून के तहत जीवन को दर्शाता है। और मुझे नहीं पता कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, अपने स्वयं के प्रयास से ईश्वर के मानक को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं, एक विद्वान के रूप में मुझे हर चीज को सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने, हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करने का प्रलोभन होता है। और जब मैं आत्मनुशासन के साथ ऐसा करने की कोशिश करता हूँ, अपने जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं खुद को परेशानी में डाल लेता हूँ। मेरा एक सहकर्मी है जो कहता है कि वह ओसीडी है और मैं ऐड हूँ। मैं वास्तव में वस्तुतः ऐड हूँ, लेकिन उनका कहना है कि वह वास्तव में ओसीडी जुनूनी बाध्यकारी विकार नहीं है। उनका कहना है कि वह वास्तव में सीडीओ है, क्योंकि इसे वर्णानुक्रम में रखना होगा। लेकिन किसी भी स्थिति में हम इन विवरणों पर ध्यान दे सकते हैं। और यदि आप शुरुआत में ओसीडी नहीं थे, तो यह आपको ओसीडी बना सकता है। लेकिन ईश्वर का तरीका हर चीज को स्वयं सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करने की कोशिश करना नहीं है, बल्कि ईश्वर का तरीका उसकी पवित्र आत्मा पर भरोसा करना है कि वह हम में काम कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आत्मनुशासन का अभ्यास नहीं करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम पहचानते हैं कि भगवान हमारे अंदर काम कर रहे हैं। यह विश्वास है, न कि विश्वास जिसे आप सूक्ष्म रूप से प्रबंधित करते हैं, लेकिन यह विश्वास है जो हमारे अंदर बढ़ता है, क्योंकि हम भगवान की वफादारी देखते हैं। तो यह कानून के तहत जीवन को दर्शाता है। यह सच है, चाहे वह अपने वर्तमान जीवन का वर्णन कर रहा हो या अपने पिछले जीवन का। एक ईसाई के रूप में मैं कुछ हद तक इसका इस तरह के संघर्ष का अनुमान लगा सकता हूँ, क्योंकि ईश्वर ने मसीह में मेरे लिए जो किया है उसे स्वीकार करने के बजाय मैं खुद को ईश्वर के सामने सही साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यह सवाल कि क्या पॉल यहाँ अपने वर्तमान जीवन या कानून के तहत जीवन के बारे में बात कर रहा है जो वर्तमान जीवन नहीं है, बहस का मुद्दा रहा है। पॉल यहाँ क्या संबोधित कर रहा है? क्या यह पॉल का वर्तमान या उसका अतीत है या कुछ भी नहीं? खैर, पॉल का अनुभव शायद उसकी प्रस्तुति को सूचित करता है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह उसके अपने अनुभव तक ही सीमित हो। वह कानून के तहत जीवन का वर्णन कर रहा है। वह 7:7-13 में भूतकाल की क्रियाओं का उपयोग करता है, लेकिन 7:14-25 में वर्तमान क्रियाओं का उपयोग करता है। टिप्पणीकार विभाजित हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश को संदेह है कि पॉल अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। कई रोमन, कई लैटिन चर्च फादरों का मानना था कि यह पॉल का वर्तमान जीवन था, लेकिन ग्रीक चर्च फादरों का आमतौर पर मानना था कि यह पॉल का पिछला जीवन था, या पॉल किसी और के व्यक्तित्व में बोल रहा था। वर्तमान काल, भाषण और चरित्र का उपयोग जब आप प्रोसोपोपिया कर रहे थे, यानी आप किसी चीज या किसी और की आवाज में बोल रहे थे, तो उन्होंने काल को बदल दिया। इसके अलावा अलंकार, एक फ्रांसिस में ज्वलंत विवरण, आप आमतौर पर एक ज्वलंत विवरण के लिए वर्तमान काल का उपयोग करेंगे। मैंने उस चीज का उल्लेख किया है जिसे परंपरागत रूप से ऐतिहासिक उपस्थिति कहा जाता है, जो कि बस कार्रवाई के भीतर चीजों को अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण से देखना हो सकता है, एक आंतरिक दृश्य। स्टैनली पोर्टर, एंड्रयू डॉस और मार्क सेफ्राइड ने यहाँ वर्तमान काल के संबंध में यही तर्क दिया है। यहाँ कुछ अतिशयोक्ति भी है। भले ही आपको लगता है कि यह वर्तमान है, और भले ही आपको लगता है कि यह पॉल का अपना जीवन है जो कि मैं नहीं सोचता, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो भी कुछ अतिशयोक्ति होगी। यह व्यक्ति कुछ भी ठीक से करने में असमर्थ है। यह कहता है, मैं पूरी तरह से गुलाम हूं, मैं कुछ भी अच्छा करने में असमर्थ हूं। यह वैसा ही है जैसा आपके पास 2:17-24 में है, इस व्यक्ति का अतिशयोक्तिपूर्ण व्यंग्यचित्र जो कहता है, मैं कानून का पालन करता हूं, मैं कानून से प्यार करता हूं, मैं कानून पर घमंड करता हूं, और आपको व्यभिचार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यह करता हूं। तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए। आह, लेकिन मैं मंदिरों को लूटता हूँ इत्यादि। यह अत्यंत स्पष्ट है और यह वह तरीका नहीं है जिस तरह से पॉल ने अपने बारे में सोचा होगा जब वह कुछ भी सही नहीं कर पाने के मामले में कानून के अधीन था। हम अन्यत्र देखते हैं कि फिलिप्पियों 3 की तरह वे कहते हैं, आप जानते हैं, उस समय मैंने सोचा था कि मेरा विवेक स्पष्ट था। मैं जो कर रहा था उस पर मैं गर्व कर सकता था। अच्छा, यहाँ मैं कौन है? फिर मेरा मानना है कि यह कानून के तहत पॉल के अपने अनुभव पर आधारित है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह सिर्फ अपने बारे में बोल रहा है। एथोपोपोलिया भाषण और चरित्र था जहां आप वास्तव में किसी अन्य व्यक्ति की नकल करेंगे। प्रोसोपोपोया, आप किसी चीज की नकल कर सकते हैं, जैसे कि यह बोलने वाला कानून हो सकता है, या प्रेम का गुण बोलने वाला हो सकता है, या कुछ और बोलने वाला हो सकता है। यह स्वयं को किसी व्यक्ति या किसी अन्य चीज के व्यक्तित्व में ढालने का एक तरीका है। अच्छा, यहाँ व्यक्तित्व कौन है? जो लोग कहते हैं कि यह सीधे तौर पर पॉल नहीं है, सबसे आम में से एक है, और कभी कभी लोग इन्हें भी मिला देंगे, यह पॉल है, और यह है कि यह एडम को संदर्भित करता है, क्योंकि कुछ भ्रम, संभावित भ्रम हैं, जो एडम के विवरण में फिट बैठते हैं। अध्याय 5 श्लोक 12 से 21 में। तो यह व्यक्ति आदम की तरह पाप कर रहा है। उदाहरण के लिए, उन्हें धोखा दिया गया है और यह ईव को एक भ्रम प्रतीत होगा। समस्या यह है कि इस शब्द का प्रयोग धर्म ग्रंथों में काफी मात्रा में किया जाता है। यह किसी भी तरह से ईव तक सीमित नहीं है, और साथ ही यह 5:13 में फिट नहीं बैठता। कानून के बिना पाप की गणना नहीं की जाती। एडम तकनीकी दृष्टि से कानून के अधीन नहीं था, हालांकि उसके पास एक आज्ञा थी। तो कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि वास्तव में यह उन लोगों का उल्लेख कर रहा है जो कानून के अधीन हैं। पॉल ने जो व्यक्तित्व अपनाया है वह इज़राइल है। डगलस मू यह तर्क देते हैं, और मुझे लगता है कि वह इसके लिए एक बेहतर मामला बनाते हैं। कभी कभी पुराने नियम में इज़राइल सामूहिक रूप से बोलता है, जैसा कि मैं कुछ भजन स्थलों और विलाप में, कभी कभी मृत सागर स्क्रॉल में, कुछ सामुदायिक भजनों में, आपके पास संपूर्ण इज़राइल मेरी तरह बोलता है, या इज़राइल के अवशेष बोलते हैं, जैसा कि मैं। तो किसी भी मामले में यह कानून के तहत एक व्यक्ति है। क्या पॉल वर्तमान में कानून के अधीन है? खैर, उन्होंने कहा कि हम कानून के अधीन थे, शारीरिक जुनून हमारे अंदर काम कर रहे थे, अध्याय 7 और श्लोक 5। लेकिन श्लोक 6 में, याद रखें, वह कहते हैं कि हम उससे मुक्त हो गए हैं, अब हमारे पास आत्मा में नया जीवन है। तो संभावना है, संदर्भ से, यह निश्चित रूप से आदर्श ईसाई जीवन से कुछ अलग चित्रित हो रहा है। आप 7:14 की तुलना 6:18, 20 और 22 अध्याय 8 और श्लोक 9 से करते हैं। कानून श्लोक 14 आत्मा से है। मैं मांस से बना हूँ, पाप के दास के रूप में बेच दिया गया हूँ। खैर, गुलाम के रूप में बेचा जाना आजाद होने पर छुड़ाए जाने के विपरीत है, अक्सर कीमत चुकाकर। 6:18 पाप से मुक्त होकर तुम धर्म के दास बन जाओगे। 6:22 अब जब आप पाप से मुक्त हो गए हैं और भगवान के गुलाम हो गए हैं, अध्याय 8 श्लोक 9, आप केवल शरीर के क्षेत्र में नहीं हैं, बल्कि आत्मा के क्षेत्र में हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान की आत्मा आप में रहता है। सो, यह कहते हुए कि मैं शारीरिक हूँ, मुझ में कुछ भी अच्छा वास नहीं करता, रोमियो 7:8, परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती है। संदर्भ के साथ एक निर्णायक विरोधाभास है। हम इनमें से कुछ विरोधाभासों को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। अध्याय 7 श्लोक 7-13, कानून, पाप और मृत्यु, और फिर भी इस संदर्भ में हम कानून से, पाप से और मृत्यु से मुक्त हो गए हैं। मैं शारीरिक हूं। नहीं, हम आत्मा में हैं। आत्मा हम में है। अब हम देह में नहीं हैं। मुझे पाप के दास के रूप में बेच दिया गया है। विश्वासियों को पाप की दासता से मुक्त कर दिया गया है। उन्हें छुड़ा लिया गया है। सही कार्य करने की क्षमता के बिना यह जानना कि कानून में क्या सही है। 7:15-23। ठीक है, आप 8:04 में धार्मिकता से जीने की शक्ति की तुलना करते हैं। यह 8:3 में बाह्य कानून द्वारा प्रदत्त नहीं है। आप 2:17-24 तक की तुलना भी कर सकते हैं, जहां यह व्यक्ति अच्छी बात करता है और कहता है कि क्या सही है, लेकिन उसके अनुसार नहीं रहता है। पाप मुझ पर निवास करता है और मुझ पर शासन करता है। 7:17-20। अध्याय 8 में आत्मा हम में निवास करती है। हमारे अंदर निवास करने वाली आत्मा के विपरीत मुझ में कुछ भी अच्छा निवास नहीं करता है। 7:18। पाप का नियम उसके शारीरिक अंगों पर हावी है। इसके विपरीत विश्वासियों को पाप के नियम से मुक्त किया जाता है। 8:2। पाप युद्ध जीतता है और मुझे बंदी बना लेता है। 7:23। खैर, फिर से विश्वासियों को आध्यात्मिक युद्ध जीतना चाहिए। हमारे पास पॉल में अन्यत्र वह भाषा है। मैं इस मृत्यु के शरीर से, इस मृत्यु के लिए नियत शरीर से मुक्ति चाहता हूँ। 7:24। जो विश्वासी अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए नहीं जीते, वे मृत्यु के मार्ग से मुक्त हो जाते हैं, उन लोगों के विपरीत जो शरीर का अनुसरण करते हैं। अपने शरीर बनाम अपने मन में पाप के नियम का गुलाम। ठीक है, अध्याय 8 और अध्याय 6, विश्वासियों को पाप के नियम से मुक्त कर दिया गया है और विश्वासियों के रूप में हमारे पास मानसिक परिप्रेक्ष्य है जो आत्मा से संबंधित है, न कि उस मानसिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत जो शरीर से संबंधित है। रोमनों में 7:15-25 तक का क्या कार्य है? रोमियो 1 में हमारे पास रोमियो 1 में बुतपरस्त दिमाग है। भ्रष्ट दिमाग वे लोग जो खुद को बुद्धिमान समझते थे, लेकिन वास्तव में मूर्ख बन गए। यह उन्हें जुनून से मुक्त नहीं कर सका और इसलिए वे तेजी से जुनून के गुलाम बन गए। ठीक है, रोमियो 7 में आपके पास वही बात है कि बाइबल से सूचित मन, यहाँ तक कि कानून से अवगत मन भी अपनी ताकत से जुनून को नहीं हरा सकता है। जब तक हम सिर्फ अपने आप पर निर्भर हैं, ठीक है, मैं वास्तव में अपने जुनून के अनुसार यही करना चाहता हूँ और मैं यही करता हूँ। अब जब मैं जानता हूँ कि मुझे कानून के बारे में सही जानकारी है, तो मुझे पता है कि मुझे इसका पालन नहीं करना चाहिए, वह जुनून। लेकिन आप जानते हैं, यह एक तरह का रस्साक्षी है। मैं कभी कभी जीतता हूँ, कभी कभी हारता हूँ, लेकिन अंततः मैं अभी भी जुनून का गुलाम हूँ। कानून ईश्वर और उसकी नैतिक मांगों के बारे में स्पष्ट ज्ञान देता है, लेकिन यह हमें सूचित करता है, यह हमें बदलता नहीं है। जानकारी अपने आप में धार्मिकता पैदा नहीं करती। अब फिर से, यदि आप हर समय परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से आपको आत्मा के अनुसार चलने में मदद कर सकता है, लेकिन केवल जानकारी जानने से आप स्वतंत्र नहीं हो जाते। जुनून और कारण के बीच विरोधाभास, हमने रोमियो 1 में इसके बारे में बात की थी, जो गैर यहूदी दार्शनिकों के लिए तर्क से जुनून पर काबू पाना एक बड़ी बात थी। विभिन्न स्कूलों ने इस बात पर बहस की कि कैसे। वास्तव में स्टोइक्स ने कहा कि जुनून को खत्म किया जा सकता है, जिसके बारे में अधिकांश स्कूलों ने नहीं सोचा था। अधिकांश स्कूलों ने सोचा, ठीक है, आपको एक प्रकार का मध्य मार्ग चाहिए। अरस्तु ने कहा, आप जानते हैं, आपको दोनों तरफ की अधिकता के बीच एक माध्य की आवश्यकता है। लेकिन अधिकांश दार्शनिक इस बात से सहमत थे कि यदि आप जुनून पर काबू पाने में सक्षम नहीं हैं, तो यह अतार्किक है। उनमें से कुछ ने वास्तव में ग्रीक नाटककारों मेडिया और फेदरा और अन्य के बारे में नाटकों से भाषा उधार ली थी। वे उन लोगों के लिए स्त्री चित्र लेना पसंद करते थे जो अपने जुनून को नियंत्रित नहीं कर सकते थे। और कृपया यह न सोचें कि मैं यहाँ महिलाओं के प्रति अपमानजनक तरीके से बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं बस यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय इसे कैसे समझा जाता था। अलेक्जेंड्रिया के फिलो, एक यहूदी दार्शनिक, ने बताया कि कैसे जुनून स्त्रैण थे, मन और कारण मर्दाना थे। और जब वह साम्राज्य की प्रशंसा करना चाहता है तो वह कहता है कि वह अपनी तर्क शक्ति में लगभग पुरुष बन गई है। उनका यह अभिप्राय एक प्रशंसा के रूप में था, लेकिन जाहिर है यह महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण को बहुत अच्छी तरह से नहीं दर्शाता है। खैर, किसी भी मामले में जहां पॉल इन शब्दों में आय की बात करता है, पॉल स्पष्ट रूप से स्त्री और पुरुषत्व के उस मुद्दे में नहीं पड़ रहा है कि जुनून अधिक स्त्रैण है या ऐसा कुछ, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसे जेसन की पत्नी मेडिया ने किसी और से शादी करने का फैसला किया, और इसलिए वह अपने आपसी बच्चों, उन बच्चों को मारकर उससे बदला लेने जा रही है जो उसके जेसन के साथ थे। और वह कहती है, मुझे पता है कि यह सही नहीं है, लेकिन मैं अपनी मदद नहीं कर सकती। और उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो जुनून से अभिभूत है। खैर, पॉल के लिए इस तरह से एक सख्त कानून पर्यवेक्षक को चित्रित करना चौंकाने वाला होगा, क्योंकि यह कोई है जो एक गैर यहूदी की तरह है जो अपने जुनून से शासित होता है, कुछ ऐसा जिसके बारे में दार्शनिकों ने भी कहा था कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ दार्शनिकों ने वास्तव में सोचा था कि सामान्यतः यह जानना कि क्या सही है, वही करना है जो सही है। और यदि आप वास्तव में समझते हैं कि क्या सही है, तो आप वास्तव में वही करते हैं जो सही है। पॉल यह नहीं कहता कि यह पर्याप्त नहीं है। यदि यह केवल आप ही हैं, तो यह अभी भी देह है। यहूदी दार्शनिकों, आपके पास यह फिलो में है, आपके पास यह चार थे मैकाबीज में है, इत्यादि। प्रवासी भारतीयों में यहूदी बुद्धिजीवियों ने तर्क से जुनून पर काबू पाने की बात की, लेकिन दार्शनिकों की तरह सामान्य तरीके से नहीं। उन्होंने कहा कि वह कारण हमारे लिए तोराह में, कानून में निहित है। इसलिए यदि हम कानून में ध्यान करते हैं तो हम उन जुनूनों पर काबू पाने में सक्षम होंगे। यहूदी विचारकों ने यतिजराह के बारे में बात की, आपके पास यह मृत सागर स्क्रॉल और अन्य जगहों पर दुष्ट आवेग है, और जिस तरह से आप इस बुरे आवेग पर काबू पा सकेंगे, यहूदी सोच ने जोर दिया, वह टोरा के अध्ययन से था। जितना अधिक आप टोरा को समझेंगे, उतना ही अधिक आपके पास यतिजरा होगा, जैसा कि रब्बियों ने अंतह जोर दिया था, एक अच्छा आवेग जो बुरे आवेग पर काबू पा लेगा। पॉल कहते हैं, अच्छा है, लेकिन यह काम नहीं किया। कानून पाप को सीमित करता है, लेकिन यह हमें परिवर्तित नहीं करता है। अंतर धार्मिकता प्राप्त करने का प्रयास करने और धार्मिकता प्राप्त करने के बीच का अंतर है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए क्या किया है। अब जब हम जुनून को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? जाहिर है, इसका मतलब यह नहीं है कि जब पति पत्नी प्यार कर रहे हों, तो उन्हें अपने जुनून पर नियंत्रण रखना चाहिए। और इसका मतलब यह नहीं है कि जब हमें प्यास लगे, तो हमें पानी नहीं लेना चाहिए। कभी कभी यूनानी दार्शनिक जब जुनून के बारे में बात करते थे, तो उनका मतलब कभी कभी किसी भी प्रकार की शारीरिक भावनाओं से भी होता था। स्टोक्स ने विशेष रूप से भावनाओं को खत्म करने के बारे में बात की, हालांकि उनका तात्पर्य विशेष रूप से नकारात्मक भावनाओं, भय और चिंता इत्यादि, क्रोध से था। अब स्टोक्स को कभी कभी इस तथ्य का सामना करना पड़ता था कि यह हमेशा उनके लिए काम नहीं करता था। जैसे आपके पास यह विवरण है, एक स्टोइक दार्शनिक का प्रत्यक्षदर्शी विवरण। वह एक तूफान के दौरान समुद्र में है और वह डर से पूरी तरह से सफेद हो गया है। वह कुछ नहीं कह रहा है, वह चिल्ला नहीं रहा है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से डरा हुआ है और नाविक उस पर हंस रहे हैं। जो जुनून से अभिभूत पॉल के लिए इस तरह से एक लेकिन मैं अपनी मदद नहीं कर सकता ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। खैर करना चौंकाने वाला होगा क्योंकि यह कोई है जो एक गैर सख्त कानून पर्यवेक्षक को चित्रहूदी की तरह है जो अपने और इसलिए जहाज पर सवार यह दूसरा बुद्धिजीवी उससे पूछता है ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने कहा ठीक है आप जानते हैं मैंने अभी तक भावनाओं को नियंत्रित करने या इस प्रकार की भावनाओं को नष्ट करने के इस स्तर को पूरी तरह से हासिल नहीं किया है। सेनेका ने इसे इस तरह से समझाने की कोशिश की आपके पास भावना है और फिर आपके पास पूर्व भावना है और यह वास्तव में वह भावना है जिसे आपको नियंत्रित करना है। जो शुरू में आपके भीतर उठता है उसे आप रोक नहीं सकते लेकिन जैसे ही आपका मस्तिष्क सक्रिय होता है ठीक है जैसे ही आपका संज्ञान सक्रिय होता है और आप इसके बारे में सोच सकते हैं तभी आपको इसे नियंत्रित करना होगा। और वास्तव में न्यूरोसाइकोलॉजी के आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि मस्तिष्क के विभिन्न भाग होते हैं। कुछ चीजें आपके बारे में सोचने का समय मिलने से पहले ही संसाधित हो जाती हैं और हम उन चीजों के लिए संज्ञानात्मक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। आपके पास एक विशेष प्रकार की भय प्रतिक्रिया होती है जैसे आप शोर सुन सकते हैं और उछल सकते हैं लेकिन ऐसा लगता है ओह यह सिर्फ आतिशबाजी है। यह अमेरिका में 4 जुलाई है या ऐसा ही कुछ हालांकि मैं अभी भी हर बार कूदता हूँ। मेरी पत्नी जो युद्ध के दौरान शरणार्थी थी जब भी सुनती है तो उछल पड़ती है। हर कोई ऐसा नहीं करता लेकिन हमारे पास ये स्वचालित प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन फिर आप जानते हैं यह पहले मस्तिष्क के उस हिस्से में जाता है और फिर हमारे पास इसे संसाधित करने और इसके बारे में सोचने का समय होता है और फिर हम एड्रेनालाइन को कम कर सकते हैं और इसी तरह शांत हो सकते हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार की भय प्रतिक्रिया नहीं होती तो जब तक हमें पता चलता कि यह एक शेर है जो हम पर कूदने के लिए तैयार हो रहा है मेरा मतलब है मानव जाति शायद बहुत पहले ही विलुप्त हो चुकी होती है ना? तो वे हमारे लिए सहायक हैं। स्टोइक्स ने कहा हमारे पास इस तरह की बहुत सारी इच्छाएं हैं लेकिन एक बार हमारे पास रुकने और इसके बारे में सोचने का समय हो तो हम उन चीजों को दबा सकते हैं। खैर पॉल सभी भावनाओं को दबाने के लिए तैयार नहीं है। जब पॉल जुनून के बारे में बात करता है तो वह इसे परिभाषित करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करता है वह अध्याय 7 और श्लोक 7 में लालच की बात करता है। वह निर्दिष्ट करता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है और वह उस बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में टोरा बात कर रहा था। रोमियो 7:07 निर्गमन 20 या व्यवस्था विवरण 5 से उद्धरण 10 आज्ञाओं में से अंतिम आपको लालच नहीं करना चाहिए। जब कानून कहता है कि तुम्हें इच्छा नहीं करनी चाहिए तो कानून का क्या मतलब है कि तुम्हें इच्छा नहीं करनी चाहिए? क्या इसका मतलब किसी तरह की इच्छा है? स्टोइक दार्शनिकों ने इसे इसी तरह से लिया होगा। किसी भी चीज की इच्छा मत करो और यदि वह तुम्हें नहीं मिलेगी तो तुम निराश नहीं होगे। लेकिन पॉल के लिए इसे टोरा द्वारा आकार दिया गया है। तुम्हें अपने पड़ोसी की पत्नी अपने पड़ोसी की संपत्ति इत्यादि का लालच नहीं करना चाहिए। यह अन्य 10 आज्ञाओं को लेने जैसा है। तुम चोरी नहीं करोगे तुम व्यभिचार नहीं करोगे और दिल के लिए जाओ। यीशु ने पहाड़ी उपदेश में ऐसा किया ताकि यह सिर्फ यह न हो कि आप क्या करते हैं बल्कि यह भी कि आप कौन हैं। और इसीलिए यीशु कहते हैं कि कानून कहता है कि तुम्हें हत्या नहीं करनी चाहिए। यीशु कहते हैं कि तुम मारना नहीं चाहोगे। कानून कहता है कि तुम व्यभिचार नहीं करोगे। यीशु कहते हैं कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मैथ्यू 5:28 में वह जिस भाषा का उपयोग करता है वह वास्तव में वही ग्रीक शब्द है जो आपके पास 10 आज्ञाओं से है, जो 10 आज्ञाओं का ग्रीक अनुवाद है। तुम वासना नहीं करोगे अर्थात अपने पड़ोसी की पत्नी को अपने लिए पाने की इच्छा नहीं करोगे। तो यहाँ जुनून से उसका क्या मतलब है? वह जुनून शब्द का उपयोग करता है, वह लोभ या इच्छा शब्द का भी उपयोग करता है। वह जिस चीज का उल्लेख कर रहा है वह उस चीज की इच्छा करना है जो भगवान कहते हैं कि आपके पास नहीं होनी चाहिए। यह आपके लिए अच्छा नहीं है, यह आपके पड़ोसी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए स्टोइक्स ने सोचा कि वे इसे नियंत्रित कर सकते हैं और प्रवासी यहूदियों और यहूदी शिक्षकों ने सोचा कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर अगर आप उनसे पूछें कि क्या आप इस पर नियंत्रण रखते हैं, वे कहेंगे ठीक है, नहीं, मैंने अभी तक वह हासिल नहीं किया है, लेकिन इस तरह मैं वहां पहुंच सकता हूं। खैर, पॉल के पास हमारे लिए इससे भी बेहतर तरीका है। मेरा मतलब है आप कुछ नैतिक सुधार करने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा मतलब है व्यवहार में। पॉल यह नहीं कह रहा है कि जो लोग टोरा रखते थे वे बाहर जा रहे थे और उसी तरह कार्य कर रहे थे जैसा वह सामान्यतः रोमन 1 में वर्णन कर रहा था। मेरा मतलब है यह पाप को नियंत्रित करता है लेकिन यह हमें अंदर से नहीं बदलता है। तो वह उस मन के बारे में बात करता है जो पाप को नियंत्रित करने में असमर्थ है। पद 23 में वह कहते हैं, कानून प्रशिक्षित दिमाग भगवान के कानून 7:22:23 से सहमत है और फिर भी कानून के पापोत्तेजक पहलू का कैदी बन जाता है। कानून पाप की ओर ध्यान आकर्षित करता है। यह वैसा ही है जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि गुलाबी हाथी के बारे में मत सोचो तो आप क्या सोचेंगे? ओह, देखो तुम एक गुलाबी हाथी के बारे में सोच रहे हो। मैंने तुमसे कहा था कि उस बारे में मत सोचो। पॉल युद्धबंदी की भाषा का भी प्रयोग करता है। युद्धबंदी सामान्यतः गुलाम होते थे, फिर भी पॉल ने कहा है कि हम गुलामी से मुक्त हो गए हैं। रोमियो 7 में समस्या यह है कि हमें जानकारी से अधिक की आवश्यकता है, न कि यह कि जानकारी बुरी है। पॉल का कहना है कि कानून अच्छा है। यह हमें सही और गलत की शिक्षा देता है, लेकिन हमें जानकारी से कहीं अधिक की आवश्यकता है। यह हमारी मदद कर सकता है, लेकिन इसे प्रस्तुत करने के पॉल के अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से हम अभी भी पाप के गुलाम हैं। केवल यीशु मसीह में धार्मिकता का उपहार, केवल वह नई पहचान जो वह हमें देता है, वही है जो हमें ईश्वर के सामने सही बनाती है, और यह वह है जो हमें धार्मिकता प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि एक नई पहचान से बाहर धार्मिकता से जीने में सक्षम बनाती है। धार्मिकता एक प्रदत्त है और इसलिए हम इस तरह से जीते हैं क्योंकि भगवान ने हमें नया बनाया है, और हम अध्याय 6:11 में वास्तव में उस पर विश्वास करने और उसके अनुसार जीने का साहस करते हैं। तो 25 में वह कहते हैं, ईश्वर का धन्यवाद हो। 7:24 वह कहता है, मुझे इस मृत्यु के शरीर से कौन छुड़ाएगा? खैर, भगवान का शुक्रिया 7:25 की शुरुआत में ही इसका उत्तर प्रतीत होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार वह पाप से मुक्त हो गया है। और फिर वह अध्याय 8:1-7 में जीत का वर्णन करता है। लेकिन पहले वह 7:25 के अंत में सारांश देता है कि मन सही करना चाहता है लेकिन अभी भी शरीर के अधीन है। उन्होंने 7:16, 7:22 और 7:23 में इसके बारे में बात की, मन सही काम करना चाहता है। लेकिन जैसा कि वह 7:25 के अंत में सारांशित करता है, मन सही करना चाहता है, लेकिन यह अभी भी शरीर के अधीन है, जो शरीर के मन बनाम आत्मा के मन के विषय को पेश करने जा रहा है, जो हमारे अंदर है। अध्याय 8। हम आत्मा के जीवन के बारे में सीखना शुरू करते हैं। जो लोग मसीह यीशु में हैं, उनके लिए कोई निंदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। अध्याय 8:2-7:25। उसने हमें पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त किया है। इसके बजाय हमारे भीतर जो काम कर रहा है, वह हमारे सदस्यों के भीतर मृत्यु का नियम नहीं है, जैसा कि रोमियो 7 बताया गया है, बल्कि यह जीवन की आत्मा का नियम है। कानून हमारे दिल में लिखा है। अब वह सदैव आदर्श था। भजन 37:31-40:8, यशाया 51:7, विचार हमेशा हमारे दिल में कानून रखने का था। लेकिन विशेष रूप से यिर्मयाह 31:33 में नई वाचा के साथ कानून हमारे दिलों में लिखा गया है। जैसा कि हमने पहले बताया, ईजेकिए 36:27, आत्मा के अनुसार यह कैसे होता है? मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर रखूंगा और तुम्हें मेरे नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। हम कभी कभी पुराने नियम में आत्मा के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जोएल की भविष्यवाणी याद रखें, मैं अपनी आत्मा सभी प्राणियों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी वगैरह करेंगे। आत्मा का यह उपहार पूरे समुदाय के लिए है। वे सभी जो परमेश्वर का अनुसरण करने का दावा करते हैं, उनके भीतर परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रूप से और अधिक खुले तरीके से काम करती है। पॉल 3:4 में इस आवश्यकता का कारण बताते हैं। कानून हमें बदल नहीं सका। कानून हमें पाप से नहीं बचा सका, क्योंकि कानून शरीर के माध्यम से कमजोर था, यानी इसे निभाना हमारी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन भगवान उससे भी आगे निकल गए। संभवतः परमेश्वर ने अपने पुत्र को पापबलि के रूप में भेजकर हमें पाप से बचाया। कभी कभी इसका अनुवाद पाप के संबंध में किया जा सकता है। यह पेरी हमार्टियास है। तो पाप के संबंध में वस्तुतः यह है कि आप इसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन पुराने नियम में अक्सर इस वाक्यांश का उपयोग प्रसाद के संबंध में किया जाता है, और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को पाप के संबंध में पापबलि के रूप में भेजकर ऐसा किया। इसलिए कानून का धार्मिक मानक वह कहता है, हम में पूरा होता है, क्योंकि हम शरीर के बजाय आत्मा के अनुसार चल सकते हैं। और फिर वह श्लोक 5-7 में शरीर के मन और आत्मा के मन को संबोधित करता है, और यह मेरा अनुवाद है। मैं इसके विचार को संदर्भ से पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं, न कि केवल व्यक्तिगत शब्दों से, क्योंकि जो लोग अपने शरीर के लिए जीते हैं, वे शरीर के विश्वदृष्टिकोण से जीते हैं। लेकिन जिनका जीवन आत्मा द्वारा निर्धारित होता है, उनके सोचने का तरीका आत्मा से प्रभावित होता है। शारीरिक मनस्थिति में मृत्यु शामिल है, और अंततः हमारे नश्वर शरीर वैसे भी मरने वाले हैं यदि प्रभु पहले वापस नहीं आते। लेकिन अगर हम उस आत्मा में हैं जो अंततः हमें पुनर्जीवित करेगी, तो हमारे भीतर एक अलग सिद्धांत काम कर रहा है। शारीरिक मन के ढांचे में मृत्यु शामिल है, लेकिन आत्मा के मन के ढांचे में जीवन और शांति शामिल है। इस प्रकार सोचने का शारीरिक तरीका परमेश्वर के प्रति शत्रुतापूर्ण है, क्योंकि यह परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं करता है और ऐसा करने में सक्षम भी नहीं है। जब वह शारीरिक मन के बारे में बात करता है, तो उसे वह याद आता है जो उसने अभी अध्याय 7:23-25 में कहा है। वह पहले ही कह चुका है कि जब वह यहाँ बोलता है, तो शारीरिक मन ईश्वर के प्रति समर्पण करने में सक्षम नहीं है। यह ईश्वर के साथ शत्रुता है। वह हमारे परिवर्तन से पहले ही हमारे बारे में बात कर चुका है। हम परमेश्वर के शत्रु थे, परंतु अब हमारा उससे मेल हो गया है। वह यहाँ कहते हैं कि शारीरिक मन मृत्यु है। खैर 7:24 में उन्होंने कहा, मुझे इस मृत्यु निश्चित शरीर से कौन मुक्त करेगा। और अध्याय 8:10 में वह कहने जा रहा है, यद्यपि आपका शरीर मृत्यु के लिए नियत है, आत्मा जीवन है। यदि हमारे पास केवल मांस है, यदि हमारे पास केवल हम ही हैं, और हमारे अंदर कार्य करने वाला ईश्वर नहीं है, तो अनंत जीवन की कोई आशा नहीं है। हमें ईश्वर की आवश्यकता है कि वह हमें वह दे, और हमें उसकी आत्मा के सशक्तिकरण की आवश्यकता है, ताकि हमें उस अनंत जीवन का, उस पुनरुत्थान की शक्ति का पूर्वाभास हो जो पहले से ही हमारे अंदर काम कर रही है। जब यीशु वापस आता है, फिलिप्पियों अध्याय 3:19-21 वास्तव में इस बारे में बात करता है। आपके पास ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग सिर्फ उनके पेट पर है, जो एक सामान्य तरीका था, विशेष रूप से फिलो, लेकिन उन लोगों के बारे में बात करने का एक सामान्य दार्शनिक तरीका जो अपने जुनून से गुलाम थे, अपनी शारीरिक इच्छाओं से शासित थे। वह उन लोगों की बात करते हैं जिनका भगवान उनका पेट है। वह रोमियो 16:18 और 1 कुरिन्थियों 6:13 में भी कुछ ऐसी ही बात करने जा रहा है। हालांकि 6:13 में वह विशेष रूप से यौन अनैतिकता के संदर्भ में बोल रहा है, लेकिन वह उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनका भगवान उनका पेट है, लेकिन वह कहते हैं कि यह हमारे लिए अलग है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। वह 3:19 में फिलिप्पियों के बारे में बात करता है जिनका मन सांसारिक चीजों पर लगा हुआ है, लेकिन हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। और वह 21 कहता है, वहां से हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा, और जब वह आएगा तो हमारे नश्वर शरीर उसके अपने गौरवशाली शरीर के समान बदल जाएंगे, हम महिमा के शरीर प्राप्त करेंगे, उस समय हमारी महिमा होगी। तो यहाँ जब वह शारीरिक मन की तुलना कर रहा है और इसमें मृत्यु शामिल होने की बात कर रहा है, तो यह एक ऐसा मन है जो ठीक है, मैं आज के लिए जीता हूँ, मुझे यही मिला है, मैं इस जीवन के लिए जीता हूँ, मुझे यही मिला है। जबकि आत्मा का मन हमें एक शाश्वत दृष्टिकोण देता है और हमें ईश्वर का दृष्टिकोण और ईश्वर का हृदय देता है, और हम एक अलग तरीके से जी सकते हैं क्योंकि ईश्वर हमारे अंदर रहता है। वह कहते हैं, शारीरिक मन परमेश्वर के नियम को पूरा करने में असमर्थ है। अध्याय 8:2 हमारे भीतर आत्मा के कानून ने हमें कानून के दृष्टिकोण से मुक्त कर दिया है, जो कि निंदा का दृष्टिकोण है। अध्याय 8:3-4, मसीह ने हमारे दंड को सह लिया, इसलिए व्यवस्था की धार्मिकता आत्मा के द्वारा हम में पूरी होती है। वास्तव में इनमें से कुछ बिंदु ऐसे हैं जहां पॉल के यहूदी समकालीन किसी न किसी तरह से उससे सहमत होंगे, वे उससे असहमत होंगे। उनका मानना था कि हमें व्यवस्था में आनंद मनाना चाहिए, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं में आनंदित होना चाहिए। वे कवनह आंतरिकता में भी विश्वास करते थे। अब हम हमेशा वैसा नहीं होते जैसा हम कागज पर मानते हैं, और पॉल भी उसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनके समकालीन इससे असहमत होंगे। उन्होंने यह नहीं कहा होगा कि हमें ऐसा करने के लिए सशक्त बनाने के लिए आत्मा व्यापक रूप से उपलब्ध थी। याद रखें, उनमें से कई, विशेष रूप से अभिजात वर्ग के बीच, कानून के शिक्षकों के बीच और सदूकियों जैसे राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच, यह नहीं मानते थे कि उनके समय में आत्मा सक्रिय थी। कुछ आम लोगों का मानना था कि ईश्वर अभी भी पैगंबरों को खड़ा करेगा। उनमें से कई लोग ऐसे लोगों का अनुसरण करते थे जो भविष्यवक्ता होने का दावा करते थे। बेशक उनमें से कई ने यीशु का अनुसरण किया, जो वास्तव में एक भविष्यवक्ता था, और जैसा कि हम जानते हैं, वह एक भविष्यवक्ता से कहीं अधिक है। लेकिन आत्मा का उंडेला जाना कुछ ऐसा नहीं था जिसकी विशेष रूप से नेताओं और शिक्षकों को उम्मीद थी कि उनके समय में ऐसा होगा। मृत सागर स्क्रॉल में यह थोड़ा अलग है, जहां वे उनके बीच सक्रिय आत्मा की बात करते हैं, जिसमें कानून को समझने की बात भी शामिल है। लेकिन यहां तक कि मृत सागर स्क्रॉल भी भगवान की आत्मा के भगवान के लोगों के बीच सक्रिय होने की बात नहीं करते हैं। नए नियम में हमारे पास आत्मा का उंडेला जाना और परमेश्वर के सभी लोगों को परमेश्वर से सुनने और परमेश्वर के लिए बोलने का अधिकार दिया जाना है। परमेश्वर की आत्मा, जैसा कि हम देखेंगे, हमारी आत्मा की गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। यह उस बात से कहीं आगे है जिसके बारे में पॉल के समकालीनों ने अपने समय में होने वाली किसी घटना के बारे में बात की थी, और जो हमें याद दिलाता है वह यह है कि हम कर सकते हैं, और मैं यह कहता रहता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि कोई भी बात न चुके। हम बाइबल का अध्ययन करते हैं क्योंकि हम यह समझना चाहते हैं कि ईश्वर हमें क्या सिखाता है, लेकिन बाइबल हमें ईश्वर के साथ संबंध की ओर इशारा करती है, और यह हमें इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि ईश्वर ही वह है जो हमें सही ठहराता है। ईश्वर वह है जो हमें अपने साथ सही बनाता है, और जब वह हमें अपने साथ सही बनाता है तो ईश्वर ही हमारे भीतर कार्य करता है, जो हमें एक नए तरीके से जीने के लिए सशक्त बनाता है। इसलिए हम केवल स्वयं पर निर्भर नहीं हैं, हम ईश्वर पर भरोसा कर रहे हैं। शुरुआत में हमें उसके साथ सही बनाने के लिए और हमें उस तरह जीने में सक्षम बनाने के लिए जैसे उसने हमें सही बनाया है, और हम इसे और अधिक देखेंगे जैसे हम रोमियो अध्याय 8 में आगे बढ़ेंगे और हम आत्मा के मन के बारे में बात करेंगे। यह रोमन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर क्रेग कीनर हैं। यह रोमियो 7:01-8:04 पर सत्र क्रमांक 8 है।